जो इस वसवसे से अपने आप को बचा पाता हूं। हालांकि तसव्वुफ की बुनियाद जो है वो तो ये राह इसीलिए कायम की गई है कि आदमी अपने अंदर इखलास पैदा करे। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह से हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तसव्वुफ क्या बला है तो उसके जवाब में हजरत ने जो मुख्तसर जवाब दिया बड़ा जामे था। ये तसीह नियत है जिसकी शुरुआत होती है इन्नमल आमालु बिन्नियात से और जिसकी इंतहा है अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु उस पर। बहुत बड़ी चीज है, हम लोग तो इसको पता नहीं कोसों दूर है इन चीजों से। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, ये शैतान ये इस राह का जो मकसूद असली है क्या, इखलास पैदा करना। इखलास और एहतिसाब पैदा करने के लिए ये सारी मेहनत की जाती है। पहले ही दिन से शैतान उसी में आदमी को मुब्तला करके कुल्हाड़ा मारता है, उसके ऊपर उसकी जड़ काटता है। पहले ही दिन से दिल के अंदर जो है वो यही ख्याल रहता है कि हमें भी कुछ मिल जाए इजाजत। और ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बयान करूं, हंसी भी आती है। ऐसे ऐसे लोग, एक हमारे साथी हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मखसूस आदमी है, उनका एक अजीज जो कुछ दिन मेरे पास रहा, बहुत साल पहले की बात है, एक मैंने पूछा, वो तो बेचारा 16-17 साल की उम्र थी, बच्चा था वो, मैंने पूछा क्या था, वो कहो हमारी इनको जो चीज है वो अल्लाह ये मुझे मिल जाए इजाजत मिल जाए। तो मुझे दिल ही दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ये शैतान कहाँ कहाँ आदमी को बहला फुसला देता है। ये बदनीयती यही चीज, ये क्या है, इजाजत की ख्वाहिश, ये हुक्म जा है। क्या है हुक्म जा, जिंदगी शरीर में बकरियों का कोई ऐसा रेवड़ जिसकी हिफाजत और निगरानी करने वाला कोई चरवाहा वहाँ मौजूद नहीं है, उस रेवड़ में दो भेड़िए खूनखार छोड़ दिए जाएं, जाहिर है वहाँ उन बकरियों का बचाव करने वाला तो कोई है ही नहीं, वो भेड़िए दो उस रेवड़ को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना आदमी के दीन को हुब्बे माल और हुब्बे जाह नुकसान पहुंचाते। माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत, ये दोनों हम लोगों की गुट्टी में पड़ी हुई है और यही वो चीज है। बस हर आदमी दिल में यही ख्वाहिश ले आता है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक लतीफा सुनाते थे, लतीफा क्या वाकया है, एक देहाती हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और बुजुर्गों के पास आते हैं, हदिया भी देते हैं, और उधर के देहाती बड़े सादा, हमने तो वहां जिंदगी गुजारी है, बड़े मुखलिस भी हो, ये भी बड़ा सादा, एक आना हजरत की खिदमत में हदिये के तौर पर पेश किया। फिर थोड़ी देर तक बैठा और फिर उसके बाद कहता है, अजी दे दो ना वो, अजी दे दो ना वो। हजरत ने फरमाया क्या दे दे, अरे वो जो इजाजत इजाजत खिलाफत खिलाफत का खिलाफत। तो कहा ये एकाने इसलिए दिया था, कहा तो हजरत ने फरमाया एक आने में खिलाफत तो क्या आती, किस्मत भी नहीं आती। क्या आप तो उर्दू नहीं जानते ज्यादा, किस्मत वो जो नाई होता ना, तो नाई का हजामत का जो सामान उसका डिब्बा और उसके अंदर उसका उस्तुरान कैंची नहीं है, उस पूरे सामान का नाम किस्मत है, उर्दू में उसको किस्मत कहते हैं। और चूंकि वहां नाई को खलीफा भी कहते हैं, समझ रहे हैं कि हम लोगों की खिलाफत तो वो है ना। तो हजरत ने कहा खिलाफत भाई एक आने में खिलाफत तो क्या आती, किस्मत भी नहीं आती। हमारा हाल ऐसा हो गया हर आदमी, बस इसी इसमें गोया शैतान इखलास से कोई काम करने ही नहीं देता। मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई अगर मिल भी गई खुदा ना खास्ता खिलाफत तो क्या होगा, कोई परवाना मिल गया नजात का, परवाना मिल गया, क्या कोई जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया? खुद जो दे रहा है उसको अपने अंजाम का हाल मालूम नहीं, फिर क्या ये क्या तमाशा बना रखा है? असल ये है कि आदमी अल्लाह की रजा भी कर, हजरत का निस्बत नाम है दो चीजों का, बंदे की तरफ से इताअत दायमा और जिक्र गालिब। वही दवा में जिक्र, दवा में ताज जिसका नाम कहा था कि हर वक्त उसकी तबीयत में उसके ऊपर अल्लाह की जात का इस्तेजार रहे, अल्लाह की याद 24 घंटे उसके दिलो दिमाग पर सवार रहे, एक लम्हा भी अल्लाह की तरफ से वो गाफिल न रहे। अब जो गाफिल नहीं रहेगा एक लम्हा भी, भला वो किसी मासियत का इर्तिकाब कर सकता है? फिर भी इताअत दायमा यानी हर मौके पर अल्लाह का जो हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे होता है उस हुक्म को बजा ला। इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ने आपके सामने बिठला कर मुझसे क्या मुतालबा किया है वो पूरा करो। आप घर में हैं बीवी बच्चों के पास, तो उस वक्त घर में होने की सूरत में बीवी बच्चों के अंदर रहकर आप पर क्या शरीयत का मुतालबा है आप उसको पूरा करें। नमाज के वक्त मस्जिद में जा रहे, पूरे 24 घंटे आदमी के हालात बदलते रहते हैं, उन बदले हुए अहवाल में अल्लाह उससे क्या चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म कौन सा उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, उस हुक्म को बजा लाना, इसी का नाम है क्या? इताअत दायमा। ये दो चीजें हैं बंदे की तरफ से, और उसके जवाब में अल्लाह की तरफ से क्या है? रजा और कबूलियत। बंदे का जब ये हाल होगा, बंदा हर काम अल्लाह के लिए करेगा और हर वक्त अल्लाह की इताअत में मशगूल रहेगा, और साथ ही साथ जो है 24 घंटे उस पर अल्लाह की याद मुसल्लत रहेगी, तो उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला उससे राजी होंगे और अल्लाह उसको अपने यहाँ मकबूलियत अता फरमाएगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा, अल्लाह ताला कबूल कर दिए अल्लाह की तरफ से ये दो चीजें, तो अल्लाह उसको नवाजते हैं, राजी होते हैं उससे, रजा रजाए खुदावंदी, कबूलियत जो है खुदावंदी हासिल। ये है निस्बत का खुलासा। अब हमें तो ध्यान इसकी, तो हर आदमी ये कोशिश करे कि भाई मेरी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो जाए। हम तो जिन गुनाहों के आदि हैं बचपन से, जो हमारी बुरी आदतें बुरी लतें पड़ी हुई हैं, अभी तो वो 100 है, उन 100 में से 2 भी छूटी नहीं, 100 उन लतों में से 1-2 लतें भी अभी हम छोड़ नहीं पाए हैं, और हमसे जो है इताअत के काम अब तक हमने किए नहीं, वो अभी आदत भी नहीं पड़ी, और दिल में तमन्ना लिए फिरते हैं कि हमें ये मिल जाए। ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनू वाला हाल है, ये शैतान राह मारता है। इसलिए साफ कहता हूँ, हर एक आदमी 24 घंटे अपना जायजा ले, अपने कल्ब से यूं कहे कि तू किस गफलत में पड़ा हुआ है, और इस नियत के साथ जो आएगा पूरी जिंदगी आएगा तो भी जर्रा बराबर फायदा होने वाला नहीं है, जर्रा बराबर। एक आदमी जो है हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता था, एक मुद्दत के बाद कहा, हजरत इतनी मुद्दत से आपके पास आ रहा हूँ, कोई फायदा नजर नहीं आता। अगर किस लिए आए, क्या है? क्या मेरे दिल में यह है कि जो नियामत आपके पास से मिल जाए वो लोगों तक पहुँचाऊ? ये का यही तो खन्नास पड़ा हुआ है, बड़ाई का, यही तो ये पहले ही दिन से नीयत खराब है, तो जिंदगी भर भी मेरे पास पड़े रहोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये पूरा मजमा है, मैं एक बात साफ कहता हूँ, ये जो दिल के अंदर ये ख्याल सबसे बड़ी रुकावट है आदमी के राह में। छोड़ो इसको, मैं तो कहता हूँ 100 इजाजतें मिले उसकी तरफ अपना काम, हमें अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए, अल्लाह से हमारा ऐसा रिश्ता कायम हो जाए कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ताला की नाफरमानी और मासियत में हम अपने आप को मुब्तला न करें, बस अपने आप को बचाने का है, और हर वक्त अल्लाह की इताअत हो। बाकी ये निस्बतें जो है, کی نسبت ہے تو ہمارا جو صحیح کا سلسلہ چشتیہ ہے, سلسلے چشتیہ میں تو اول درجہ جو ہے وہ تخلیہ کا ہے, یعنی پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک صاف کرو. پہلے قدیم یہ جو ابھی آپ نے سنا نا, ابھی شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, کہ کتنا مجاہدہ کرایا کہ جو جڑ, جو ام الامراض, جب سارے خرابیوں کا یہ ہے کبر, وہ جب تک کہ دل سے نکلا نہیں وہاں تک دوسری چیز نہیں, وہاں تک ذکر بھی نہیں دیتے تھے. جو ہمارے مشائخ یہاں ذکر دے دیتے ہیں نا, تو یہ تو دراصل ہمارا سلسلہ ہمارے مشائخ نے مخلوط کر دیا ہے چشتیت کو اور نقشبندیت کو. سیدھی بات, نقشبندیہ کے یہاں پہلے سے ذکر دیتے ہیں. وہ حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا تھا, حضرت نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ چشتیت اور نقشبندیت, وہ ایک جگہ ہے, ایک زمین ہے, اس زمین کے اندر کانٹے ہیں اور سب جو ہے کباڑا پڑا ہوا ہے, اور یہ اب کیا ہے. تو چشتیت کی مثال تو ایسی ہے کہ بھائی پہلے اس کو صاف کرو, اس کے بعد کیا ہے آگے نمبر آئے گا کائی کا, پہلے کانٹا صاف کرو اندر سے یہ سب سب, اس کے بعد پھر اس میں جو ہے چھل چلاؤ, بیج ڈالو. تو گویا رستہ وغیرہ کا مرحلہ بات کا ہے. اب ہماری زندگیاں ایک تو مختصر, اور ابھی بھی حال یہ ہے لوگوں کو عموماً خط و کتابت جو کرتے ہیں بدنگاہی, اب بدنگاہی کے متعلق ان کو جو ہدایت کرتے ہیں ایسا کر, تو بعد میں دوسرا خط, ہاں وہ آپ نے ہدایت کیا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا بدنگاہی سے بچ رہا ہوں. اب یہی شخص 6 مہینے کے بعد پھر جب خط آئے گا تو وہی پرانی بیماری کا تذکرہ کرے گا, تو وہ فائدہ کیا ہوا تھا بھائی. ایسے ایک روٹین ہے چلنا, میری بات جان سے سنو. تو یہ عجیب سلسلہ ہے بھائی, اگر وہ اس چیز کی اصلاح ہو چکی تھی تو آئی کیوں. یہ بیماری آپ کے بقول یوں کہہ رہے تھے کہ فائدہ ہو گیا تو ابھی آئی کہاں سے. حقیقت تو یہ کہ وہ کچھ اصلاح ہوئی نہیں تھی, وہ تو ایک روٹین کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے ایسی بات لکھ دی تھی کچھ کرنے کے لیے. چنانچہ اس کا ظہور اب 10 مہینے اور 1 سال کے بعد جب ہو رہا ہے تو وہی تھی وہی بات, ایسا ہی چلتا رہتا پوری زندگی اسی میں گزر جاتی. بہرحال ایک اس کے بعد ہے تو جبکہ نقشبندیہ کے یہاں کیا ہے پہلے ہی ان سے اذکار وغیرہ بتاتے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بھائی یہ ہر ایک کانٹا اور ایک ایک ہٹانے جاؤ تو اس میں بہت لمبا وقت لگے گا, آگ لگا دو, آگ لگا دو گے تو وہ سب جل کے راک ہو جائے گا. گویا ذکر کے ذریعے سے عشق کی آگ دل کے اندر لگا دی جائے تاکہ اللہ کا عشق غالب ہو کر کے ان ساری برائیوں کے اوپر اور جو ہے رضائل کے اوپر کیا ہو جائے غالب. یہ ان کا طریقہ, ہمارے بزرگوں نے دونوں کو جوڑ کر کے چلایا. ویسے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بھی مخلوط ہی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ سید نصیر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت حضرت سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے سلسلے نقشبندیہ کے, ان سے حضرت ان کے انتقال کے بعد پھر انہوں نے رجوع کیا تھا حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی کی طرف, اور وہ حاجی عبدالرحیم صاحب کے اور خلیفہ کے, اور پھر خود حاجی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے, وہ پھر حضرت سید احمد صاحب سید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پوری زندگی گزار دی انہوں نے, اور خود بلا کر کے حضرت میاں جی صاحب کو ان سے بیعت کرایا, اور یہ تو دونوں سلسلے جڑے ہوئے ہیں. ویسے زیادہ تر ہمارے سلسلے نقشبندیہ کی امتیازی چیز جو ہے وہ ذکر بالجہر, اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اور پابندی کے ساتھ, تو اس کا انشاءاللہ برکت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب جو آتے ہیں نا وہ دل میں یہ ساری چیزیں ان سے نکالو, جب تک کہ نکلے گی نہیں وہاں تک کچھ کام ہونے والا نہیں ہے. اور ذرا اپنا جائزہ لیتے رہو ہر برائی سے, ہر گناہ سے, ایک گناہ کو اپنے گناہوں کا باقاعدہ جائزہ لے کر اس کی لسٹ بناؤ, اور لسٹ بنا کر ہر گناہ کے اوپر محنت کرو, یہ چھوٹا اس پر نشان لگاؤ, بعد میں پھر کبھی آیا کہ نہیں وہ بھی نگرانی کرتے رہو, اور اسی طرح اس کا اہتمام کرو گے تو کچھ توفیق ہو جائے گی. بہرحال ضرورت ہے کہ اس کی طرح, میں جو اس وقت تنبیہ کرنا چاہتا تھا حضرت کے مضمون میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن بہرحال یہ ابھی بنیادی چیز جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہی کہ دل میں یہ چیز جو بھی لے کر کے آئے گا
पूरी जिंदगी आएगा तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं। ये सीधी बात कान खोल कर सुन लो, दिमाग के अंदर उसको जमा करके रख दो, ये बात सीधी है। और बहुत से लोग जो है बाकायदा मस्नूई तौर पर अपने अहवाल पेश करते हैं, ये भी है, ताकि जो सुन करके उसके मुतालिक जरा अच्छा गुमान हो और कुछ कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। हमारे आदत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खुद सुना, फरमाते थे ये लोग अपने वाकई अहवाल अगर अच्छे हैं तो कहा लोग अच्छे अच्छे अहवाल तो सुनाते हैं और जो बुरा है उसका तस्करा नहीं करते। हालांकि तस्करा तो उसका पहले करना चाहिए, इसका तो नहीं होना चाहिए। खैर बहरहाल कहने का हासिल ये है कि भाई ये अपनी नीयतें दुरुस्त कर लो, जब तक नीयत दुरुस्त नहीं करोगे वहां तक शेख से फायदा होने वाला नहीं। और अभी जैसा कहा अकीदत, अकीदत शेख के साथ अकीदत के अंदर भी उसके मुतालिक दिल में कोई एतराज होना नहीं चाहिए। आजकल तो माहौल ऐसा खराब है, एक आदमी अकीदत रखे हुए तो अभी दो साथी ऐसे मिले हुए हैं जो उस पर शैतान की तरह मुसल्लत है और उसके शेख के मुतालिक उसको बार बार टॉर्चर करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि उसके दिल में उसके मुतालिक बदगुमानी पैदा हो और वो उसके फैज से महरूम। आजकल फैज से महरूमी की वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है। खैर बहरहाल ये तो अहम चीज थी, उसको पेश कर दिया।